নাম সমচিত্তানাম সুতরাং মৎকৃতাত্মনাম দর্শনাত ন ভবেদ বদ্বন্ধ পুংসো ইচ্ছণো সবিতুর্যথা পুংসোচ্ছণো সবিতুর্যথা সাধুনাম সমচিত্তানাম সুতরাং মৎকৃতাত্মনাম দর্শন ন ভবেদ বন্ধ পুংসো অক্ষণো সবিতুর্যথা সাধুনাম সমচিত্তানাম সুতরাং মৎকৃতাত্মনাম দর্শন ন ভবেদ বন্ধ পুংসো অক্ষণো সবিতুর্যথা সাধুনাম সারে ভক্তোঁ কা সাধুওঁ কা সমচিত্তানাম জো হর এক কে প্রতি সম্ভাব রাখতে হ্যায় সুতরাং পূর্ণতয়া মৎকৃত আত্মানাম उस व्यक्तियों का जो पूर्ण शरणागत हैं या मेरी सेवा करने के लिए कृत संकल्प हैं दर्शनात् मात्र दर्शन करने से न भवेत बंध सारे भौतिक बंधन से मुक्ति हो जाती है या संसारिक बंधन नहीं होता है। पुंसा व्यक्ति का अक्षणों आँखों का सबितु यथा मानो सूर्य के समक्ष हो। अनुवाद तात्पर्य भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। जब कोई व्यक्ति सूर्य के समक्ष होता है तो उसकी आंखों में अंधेरा नहीं रह जाता। इसी तरह जब कोई व्यक्ति ऐसे साधु या भक्त के समक्ष होता है तो पूर्णतया दृढ़ तथा भगवान के शरणागत होता है, तो उसका भवबंधन छूट जाता है। तात्पर्य, चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य चरितामृत मद्दलीला 22:54 में कहा है, साधु संग सर्वशास्त्र कय लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि है। यदि संयोग बस किसी की साधु अर्थात भक्त से भेंट हो जाती है तो उसका जीवन तक्षण सफल हो जाता है, वह भवबंधन से छूट जाता है। यह तर्क किया जा सकता है कि जहाँ एक व्यक्ति साधु का अत्यधिक आदर करता है वहाँ दूसरा व्यक्ति साधु का उतना आदर नहीं कर पाता, किंतु साधु हर व्यक्ति पर समदृष्टि रखता है। शुद्ध भक्त होने से साधु सदैव भेदभाव मूल भूल कर कृष्ण भावनामृत प्रदान करने के लिए उद्यत रहता है। साधु का दर्शन करने से ही मनुष्य मुक्त हो जाता है। तो भी जो लोग अत्यधिक अपराधी हैं, जो वैष्णव अपराध करते हैं या साधु अपराध करते हैं, उन्हें सुधरने में कुछ समय लगता है, इसका भी इसमें संकेत है। ज्ञान अतिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्जिनमीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्लोक 39 से हम शुरू करेंगे। श्री शुक उवाच इत्थम संकीर्तताभ्याम भगवान गोकुलेश्वर नामना चौखले बद्ध प्रहसन आह गुहकौ। तो प्रत्येक श्लोक में कुछ कुछ बातें हैं छिपी हुई। यह जो श्लोक है सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर महाराज परीक्षित से कह रहे हैं, जब नलकुबर और मणिग्रीव भगवान को प्रणाम कर लिए मुक्त हो करके जाने से पहले भगवान उन लोगों से कुछ बात कहे। यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी की मन दशा को दर्शाता है यह श्लोक 39 और श्लोक 43। ये दो श्लोक सुखदेव गोस्वामी के मन दशा को दर्शाते हैं। जैसा कि कल के क्लास के बाद मैं बतलाया था थोड़ा सा कि यहाँ पर जो शब्द आया हुआ है प्रसन्न, भगवान प्रसन्न हुए। प्रसन्नता का कारण क्या है, मैं कल बताया था कौन कौन लोग प्रसन्न थे जिनके प्रसन्नता को देख करके भगवान प्रसन्न हुए। प्रभुपाद जी कहते हैं इफ यू लव मी देन लव माय डॉग, तुम मुझे प्यार करते हो तो मेरे कुत्ते से प्यार करो। तो यदि बच्चा खुश रहता है तो बाप माँ अपने आप खुश रहते हैं। तो भगवान यहाँ पर प्रसन्न हुए हैं। वे भगवान कौन भगवान हैं? भगवान का यहाँ पर गुण वर्णन किया गया है। कौन भगवान हैं? गोकुलेश्वर हैं। परिस्थिति कैसी है भगवान की? कि उखल में रस्सी से बंधे हुए, दामना च उखले बद्ध, बंधे हुए हैं भगवान। वे बंधे हुए भगवान यह स्तुति सुनकर के प्रसन्न हुए। अब प्रसन्नता का कारण क्या है? एक कारण है जो बताया कि भक्तों को प्रसन्न देख करके प्रसन्न हुए। दूसरा, श्रीपाद जी गोस्वामी कहते हैं जब ये दोनों स्तुति समाप्त कर लिए, तो स्तुति समाप्त करने के बाद कृष्ण से कहते हैं कि हे प्रभु, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम आपके बंधन को खोल देते हैं, क्योंकि अब हम खुल गए हैं ना, क्योंकि बंधन के दुख को हम जानते हैं। बंधन में कितना दुख होता है, जिसको कांटा नहीं चुभता है उसे कांटा चुभने का दर्द पता नहीं होता है। जिसे बंधन का दुख नहीं है वो बंधन के दुख को नहीं समझ सकता है। प्रभु, हम लोग 100 साल तक बंधन में थे, वृक्ष ज्योनि में थे, तो हम बंधन के दुख को जानते हैं और हम समझते हैं कि आप भी दुखी होंगे, इसलिए यदि आपकी अनुमति हो तो हम इसे खोल दें। यह सुनकर भगवान हंस पड़े, यह सुनकर भगवान हंस पड़े कि देखो ऐसा बातें लोग कह रहे हैं। तो भगवान कहते हैं तुम लोग क्या मुझे खोलोगे? 100 साल तक तुम लोग बंधे हुए थे, अपना बंधन तो खोल नहीं पाए, मुझे क्या खोलोगे तुम लोग? तो भगवान हंस पड़े कि देखो 100 साल स्वयं बंधे हुए थे और मेरा बंधन खोलने के लिए कह रहे हैं, इसलिए भगवान हंस पड़े। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मेरा बंधन तुम लोगों से नहीं खुलेगा। अरे मेरा बंधन तो वही खोलेगा जो मुझे बांधा है, क्योंकि यहां पर रस विचार है। कृष्ण को बांधा गया था वात्सल्य भाव में, सखा लोग भी नहीं खोल पाए, ये तो दास हैं, ये कैसे खोल सकते हैं? तो जो वात्सल्य भाव में है वही खोल सकता है। फिर भगवान सोचे कि मैं सदा मुक्त हूं, बद्ध जीव सूर नर आदि ये बद्ध हैं, बंधे हुए हैं, वो मेरा स्तुति करते हैं। आज मैं बंधा हूं और ये दोनों मुक्त हो गए हैं। जो बंधा होता है वह मुझ मुक्त आत्मा मुझ मुक्त को स्तुति करता है, और आज ये मुक्त हैं और मैं बंधा हूं मेरा स्तुति कर रहे हैं। भगवान अपने लीला का रहस्य स्वादन करते हुए हंस रहे हैं। फिर भगवान इन नलकुबर और मणिग्रीव ये दोनों के कर्म को देखे कि इन लोगों ने क्या किया है, और भगवान उनके कर्म से प्रसन्न होकर के यहां पर हंस रहे थे। उन लोगों ने ब्रजवासियों का सेवा किया था, ब्रज में निवास कर करके नंद बाबा के आंगन में उन्होंने सेवा किया था। तो जो भक्त भगवान का, भगवान के भक्तों का सेवा करता है, भगवान को कोई सेवा करता है भगवान ठीक है चलता है, लेकिन भगवान ज्यादा प्रसन्न होते हैं यदि कोई भक्तों का सेवा करता है। बपू सेवा और वाणी सेवा दोनों में से कोई भी सेवा, लेकिन वाणी सेवा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। श्रील प्रभुपाद जी की वाणी सेवा है कि हम लोग पुस्तक वितरण करें, श्रील प्रभुपाद जी की वाणी सेवा है कि हम लोग मंगला आरती आए, क्लास आए, गुरु पूजा आए, संध्या आरती आए, प्रभुपाद जी लिखित दिए थे। और प्रभुपाद जी स्वयं बापू के द्वारा भी एग्जाम्पल पेश किए, 1970 का बात है, 76, जब कुंभ मेला प्रयाग में कुंभ मेला चल रहा था, उस समय बहुत ठंडा था। तो कुछ भक्त लोग जैसे तमल कृष्ण महाराज और विष्णुजान, अच्युतानंद, ये लोग भाग कर जाते थे, गंगा जी में स्नान करके आ जाते थे मंगल आरती के लिए। और कुछ भक्त लोग अपने स्लीपिंग बैग में सोए रहते थे, वो मंगल आरती नहीं आते थे। तो प्रभुपाद जी एक आध दो बार बोले कि मंगल आरती सबको आना चाहिए। बोलने का उतना असर नहीं पड़ता है जितना हम प्रमाण सेट करें। तो लीडर का यह काम होता है कि प्रमाण सेट करे। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं, यद यद आचरति श्रेष्ठा तत् तत् एव इतरतो जनः स यत् प्रमाण कुरुते लोकस्तद् अनुवर्तते। देखा जाए श्लोक में तो चार बार आचरण पर जोर दिया गया है। यत यत आचरति श्रेष्ठा तत् तत्, चार विशेषण लगाया गया है आचरण पर। लेकिन बोलने पर कि मंगला आरती आओ, क्लास आओ, गुरु पूजा आओ, संध्या आरती आओ, क्या बोलते रहेंगे, स यत प्रमाण कुरुते लोक तत्, ये प्रमाण पर बोलने पर केवल दो बार यत और तत् आया हुआ है तो उसका उतना असर नहीं पड़ता है। तो भगवान सुशील प्रभुपाद स्वयं प्रस्तुत किए कि दूसरे दिन जल्दी उठ करके, प्रत्येक दिन उठते थे और जा करके हैंडपम्प पर स्नान करने ठंडे पानी में। तो भक्तों ने देखा, अरे अरे प्रभुपाद जी स्नान कर रहे हैं ठंडे पानी में, तो नेक्स्ट डे से बिना कहे सब आना शुरू कर दिए। तो प्रभुपाद जी प्रसन्न होंगे तब कृष्ण प्रसन्न होंगे। तो प्रभुपाद जी को प्रसन्न करना बहुत जरूरी है। और प्रभुपाद जी को हम प्रसन्न कर सकते हैं उनके आदेशों का पालन कर कर करके। जैसे कृष्ण यहाँ प्रसन्न हुए क्योंकि नलकुबर और मणिग्रीव ब्रजवासियों का सेवा कर करके उन्हें प्रसन्न किए थे, इसलिए भगवान मुस्कुराए। दूसरा कारण हो सकता है कि ये लोग प्रार्थना किए हैं मुझसे कि वाणी गुणानुकथने, मेरा हम लोगों का जो वाणी है आपका गुणानुवाद करता रहे। तो भगवान जानते थे उनका लक्ष्य क्या होगा। त्रिपाद जी गोस्वामी वर्णन किए हैं कि ये दोनों बाद में स्थित कंठ और मधु कंठ होंगे, और जो जो मैं किया हूं मेरे बाप मां के सामने लोग बोलेंगे। त्रिपाद जी गोस्वामी गोपाल चंपू में यही किए हैं, उन्होंने मधुकंठ और स्थिग्न कंठ जो नलकुबर और मणिग्रीव थे, ये लोग दूसरे जन्म में हुए। तो भगवान यह समझ कर करके मेरे लीलाओं का सब सबके सामने भंडाफोड़ कर देंगे। तो भगवान हंस रहे थे इसको देख करके, सोच कर करके। तो इससे बहुत से कारण है और भी कारण है, जैसे भगवान गोकुलेश्वर हैं जो गोकुल के ईश्वर हैं। भगवान बंधे हुए हैं फिर भी विपरीत परिस्थिति होने के बाद भी भगवान भक्तों पर प्रेम दिखाने के लिए कार्य किए हैं। एक आचार्य कहते हैं, सत्यकृत गोस्वामी कहते हैं, भगवान गोकुलेश्वर हैं, ईश्वर को कोई बांध नहीं सकता है, ईश्वर पूर्णतया स्वतंत्र हैं। जन्मादस्य तुन्यातर्त चार्थी स्वविज्ञ स्वराट, बंधन होने के बाद भी जिसमें बंधन न हो वह है ईश्वर। ये है गोकुलेश्वर, बंधे हुए भी बंधे लोगों को मुक्त करने आए हुए हैं, ये है गोकुलेश्वर। भगवान समझते हैं कि ये मेरे प्रजा हैं, अब जा रहे हैं, विदाई करना हमारा काम है, इनका समय हो गया है। इसलिए तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को यह बात कह करके और बड़े खुश हैं। परीक्षित महाराज यह सुन करके बड़े खुश हैं, नलकुबर मणिग्रीव बड़े खुश हैं, और उधर नारद जी बड़े प्रसन्न हैं अपने चेलों को देख कर करके कि इन लोगों ने भक्ति अच्छा किया, भगवान खुश हो गए इनके भक्ति से। अब गुरु को बाप को चाहिए क्या? गुरु और बाप यही चाहता है कि हमारा पुत्र हमारा शिष्य भक्ति में निपुण हो, भगवान प्रसन्न हो, वैष्णव प्रसन्न हो। तो नारद जी बड़े प्रसन्न हैं, तो सब लोग प्रसन्न हैं इस नलकुबर और मणिग्रीव के कृष्ण भावना से, इन लोगों के भक्ति से। जो व्यक्ति भक्ति करता है वो सबको प्रसन्न करता है। सर गोस्वामी वृंदावन के धीर अधीर जनक प्रिय प्रिय करहु, सब लोगों को प्रसन्न करते थे सर गोस्वामी गण। तो जो भक्त होता है वो सबका सुहृद मित्र होता है। तो कई कारण आचार्यों ने बतलाया है कि भगवान के प्रसन्नता का, दामना च च मतलब जो कारण बताया गया, क्या कारण था भगवान की प्रसन्नता का, ये सब अनेक कारण है। च उखले बद्धम प्रसन्न आह गुह्यकऊ, अब इन गुह्यकऊ नलकुबर और मणिग्रीव इन दोनों से भगवान अब कुछ कहने जा रहे हैं। भगवान ये सब तो अलग अलग आचार्य लोग कमेंट्री दिए हैं, बतलाए हैं भगवान के प्रसन्नता का कारण, लेकिन असली कारण क्या है भगवान ये दो श्लोकों में बतलाए हैं, 40 और 41 में। तो श्लोक संख्या 40 में भगवान कहते हैं, ज्ञातम मम पुरेन्द्र ज्ञातम मम पुरा एव एतत् ऋषिणाम करुणात्मना। श्री भगवान उवाच, भगवान कह रहे हैं ज्ञातम मैं समझ रहा हूं, मुझे पता था, सर्वविदित था, मैं जानता हूं, मम मुझे पुरै मतलब पहले पुरै एव एतत् तुम लोग ऐसे कैसे हो गए, ये सब मुझे मालूम था। और ये कैसे हुआ, कहते ऋषिणाम करुणात्मना, नारद मुनि के विषय में बताया कि नारद मुनि जो कैसे हैं, करुणात्मना हैं, करुणा आत्मना। कोई दुरात्मा होता है, कोई सदात्मा होता है, भक्तों के लिए बन गया करुणात्मना, बड़े ही कृपालु नारद जी। नारद जी की कृपा के कारण तुम लोग आज ये प्राप्त किए हो। नारद जी कृपा कैसे हुई, तो कहते हैं कि तुम लोगों में मद भरा हुआ था। एक तो धन का मत था कि लोग कुबेर के पुत्र हैं, और ऊपर से शराब पी लिए थे, तो दो मत था। तो कहते यद श्री मदान अंधयो, तुम दोनों अंधे हो गए थे शराब पी करके, लेकिन यहां पर श्री शब्द कहा गया लक्ष्मी के चलते, धन के चलते। जैसे कि माता कुंती बतलाती है चार स्थान है, चार चाहे जहां पर मद होता है, जन्मा स्वर्जा श्रुता श्री भी एधमाना मद अपमान। ये चार जो है व्यक्ति को पागल बना देता है। उच्च कोटि में जन्म, ऐश्वर्य धन संपत्ति, श्रुता एमटेक बीटेक पीएचडी पढ़ा लिखा ज्यादा, श्री भी सौंदर्यता, तो इनके पास धन का मद था, इसलिए यहां पर स्पेसिफिकली धन मद को यहां पर भगवान इंगित किए हैं। तो कहते हैं यत श्रीमद अंधयो, तुम लोग श्रीमद से अंधे हो गए थे। और वाग भी विभ्रंश, वाग भी मतलब श्राप दे करके अपने वाणी से तुम्हारे इस भ्रम को या मद को दूर किए। अनुग्रह कृत, यह उनका अनुग्रह था, यह उनका अनुग्रह था नारद जी का, धन का विनाश करना या मद का विनाश करना यह अनुग्रह है। ऐसे ही अनुग्रह भगवान करते हैं, यस्याहम अनुग्रहामि करिष्ये तद् धनं सना, मैं जब किसी पर अनुग्रह करता हूं तो उसके धन को छीन लेता हूं। तो भगवान तो छीन लेते हैं, भक्त छीनते नहीं हैं, लेकिन वो भी वैसा ही कुछ करते हैं, श्राप दे करके या जैसे भी अनुग्रह करते हैं। तो कभी कभी गुरु वर्ग या श्रेष्ठ वैष्णव कोई डांटता है हम लोगों को, जय श्री श्री गौर निताय की, जय राधारास बिहारी की, जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, जय। जब कोई कभी गुस्सा कर देता है, डांट देता है कोई भक्त, तो समझना चाहिए कि हम लोगों पर इनका कृपा हुआ है, और तुरंत वांछा कल्पतरुभ्यः कर लेना चाहिए, न कि अपराध करना, करे हमको डांट दिए, हम ऐसा ये बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि गुरु जी केवल डांटते हैं तो समझो कि गुरु जी ने कृपा किया, और प्रेसिडेंट डांट दिया तो अच्छा नहीं है, ऐसा बात नहीं है। वो अनुग्रह किसी रूप में आ सकता है। क्यों भाई, रात को पारा दे रहा था क्या, नींद आ रही तो खड़े हो जाओ, सामने ही सोएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। तो ये अनुग्रह वैष्णव लोग विभिन्न प्रकार से करते हैं। जैसे एक एक्सपर्ट डॉक्टर होता है तो रोगी को रोग के अनुसार चिकित्सा करता है, उसका दवा करता है, तो वैसे ही वैष्णव लोग जानते हैं किसको कैसे ठीक किया जाए। किसी को प्यार करके ठीक किया जा सकता है, किसी को डांट करके ठीक किया जा सकता है। तो नारद जी का ये अनुग्रह है। तो भगवान इन दो श्लोकों में बतला रहे हैं कि तुम लोगों में जो भी परिवर्तन हुआ है इसका कारण है नारद जी का अनुग्रह। और उन्होंने कैसे अनुग्रह, तुम लोग पागल हो गए थे, श्रीमद में अंधे हो गए थे, ये उनका करुणा था कि तुम लोगों को श्राप दे करके तुम लोगों पर अनुग्रह किए, और तब साधुओं का गुणानुवाद करना शुरू किए। अब ये बात जो था श्लोक 40, यह तो केवल नलकुबर और मणिग्रीव से भगवान बोल रहे हैं, सामने ही दोनों हैं, उनके सामने भगवान ये बोल रहे हैं। अब नारद जी का गुणानुवाद भगवान कर रहे हैं, साधुओं का गुणानुवाद करते हैं। तो यह है श्लोक संख्या 41, कहते हैं साधुनाम समचित्तानाम सुतराम मत्कृतात्मनाम दर्शन नो भवेद बंध पुंसो अक्षणो सवितुर्यथा। क्या सुंदर बात कहते हैं, साधुनाम समचित्तानाम। साधु कैसे होते हैं, साधुओं का स्वभाव क्या है, यहां पर साधुओं का गुणानुवाद भगवान अपने मुख से कहते हैं। कहते साधुनाम समचित्तानाम, विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणी गवि हस्तिनी सूची कैसे है पंडिता समदर्शिना, पंडिता समदर्शिना, विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मणी गवि हस्तिने सुनिश्चय सपाके च पंडिता समदर्शिना, पंडिता समदर्शिना, वहां समदर्शिना है और यहां पर समचित्ता नाम। इसी बात को यहां पर बतला रहे हैं भगवान, उन लोगों को याद दिला रहे हैं कि तुम लोगों को याद है ना कि तुम लोग जब नारद जी आए ये उनका अनुग्रह था, तुम लोगों पर कृपा था। यदृक्षया चौदे वर्षी भगवान तत्र कौरवे अवश्य नारदो देवो चिरमाणो समुद्भुतम तम दृष्टवा वृणताम देवी विवस्त्रा सा प्रसंगिदा वांसांसी प्रयधु शीघ्रम विवस्त्र न एव गुहे गौ। यदृक्षया नारद जी अकारण ही आए उधर से, और जब नारद जी आए तो नारद जी को देख करके भगवान एड्रेस कर रहे हैं इन लोगों को, कह नारद जी को देख करके तम दृष्टवा वृणिता देव्यो विवस्त्रा साप संकिता, वो जो लड़कियां थी देवंगनाएं थी वो लोग फटाफट जाकर करके और कपड़ा पहन लिया सांप के भले डर से, लेकिन तू बदमाश लोग नंग धड़ंग वहीं पर खड़ा रहा। विवस्त्रौ मतलब नंग धड़ंग, विवस्त्रौ न एव गुह्यकौ। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं उन लोगों ने तो पहन लिया लेकिन ये दोनों गुह्यों को नहीं पहने। तो उसी बात को भगवान यहां पर याद दिला रहे हैं कि तू लोग उनका कितना अपमान किया। जब वे आए तो तुम लोग सत्सांग दनोत प्रणाम करना तो बड़ा दूर रहा, तुम लोग कपड़ा भी नहीं पहना। साधु आते हैं तो साधु को देखकर प्रणाम करना चाहिए ना, ये शिष्टाचार तो यही है ना। भगवान को भले प्रणाम मत करो लेकिन साधु को पहले प्रणाम करो। हम आते हैं तो पहले प्रभुपाद जी को प्रणाम करते हैं बाद में भगवान को प्रणाम करते हैं, यही विधि है। तो भगवान कहते हैं साधु नाम समचित्ता नाम, साधु कितने समभाव वाले हैं, समदर्शी हैं कि तुम बदमाश लोग तुम्हारे घर अतिथि आए उनका सत्कार करना तो दूर रहा तो नंद धड़ंग खड़ा रहा तुम लोग, उनका तुम लोग अपमान किया। लेकिन मेरे नारद ऐसे नहीं हैं। मेरे नारद कैसे हैं, कहते हैं सुतराम, तर मतलब पार हो जाना, तर जाना, और सु मतलब अच्छी तरह से, जो अच्छा तरह से संसारिक बंधनों से पार हो गया हो उसके लिए यूज होता है सुतराम, प्रभुपाद जी के लिए नारद जी के लिए। सुतराम जो होते हैं उनका लक्षण क्या है, तो कहते हैं मत कृत आत्मनाम। सुतराम कैसे होते हैं, मत कृतम, वो सब कुछ मेरे प्रसन्नता के लिए करते हैं। जो भाव बंधन से मुक्त हो गए हैं वो सब कुछ करते हैं मेरे प्रसन्नता के लिए। यहां पर देखिए मत कृत आत्मनाम, आत्मा, आत्मा प्रभुपाद जी कहते हैं आत्मा मतलब सेंसेज, आत्मा मतलब माइंड, आत्मा मतलब बॉडी, आत्मा मतलब सोल, एवरीथिंग फाइव थिंग प्रभुपाद जी कहे हैं, हाँ सब कुछ पांचों चीज, माइंड इंटेलिजेंस कॉन्शसनेस बॉडी सेंसेज एवरीथिंग। वे लोग सुतराम हैं जिनका ये सब कुछ भगवान में लगा हुआ है, मत करता मेरे लिए है, मेरे लिए सब काम करते हैं। ऐसे साधु महात्मा जो हैं ये एकांतिक परम भक्त हैं जो मान अपमान के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, वो समचित्ता नाम है ये महापुरुष। ये सब जो कुछ हुआ तुम लोगों का मदान खत्म हुआ मात्र दर्शन करके नारद जी का, दर्शन अपवित्र कर ए तुम्हारा गुण, दर्शन करने से। ऐसा ही कुछ श्लोक एक आया हुआ है बड़ा सुंदर, ए महाराज मुचकुंद के द्वारा ये बोला गया श्लोक है, भवा पबरगो भ्रमतो यदा भवेत् जनस्य तरहि च्युत सत्समागमम् सत्संगमो यरहि तदैव सद्गतो परा अवरेशे त्वयि जायते मति। भवा अपवर्गो, भव मतलब जन्म मृत्यु जरा व्याधि, या भव मतलब संसार, संसार की आसक्ति, और अपवर्ग मतलब मुक्त। जो संसार के जो यहां पर भ्रमण करते, भ्रमतो यदा भवेत्, इस संसार में भ्रमण करते 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 जब किसी प्रकार से यदि संसारिक बंधनों से उसकी मुक्ति हो जाती है, जनस्य तरही अच्युत सत समागमम, तब ही उस व्यक्ति का सौभाग्य उदय हो जाता है, और जिसका सौभाग्य उदय होता है वही सत समागम करता है, वही सत्संग करता है, वही कथा सुनता है। जब संसार के वस्तुओं से यदि मुक्ति प्राप्त हो जाए, जब तक से बंधन लगा रहेगा तो सत्संग में मजा नहीं आएगा, कथा में बैठेंगे और मन कहीं और चला जाएगा। तो कथा में आनंद कब आएगा, सत्संग में आनंद कब आएगा, तो कह रहे हैं मुचकुंदी, भवाप वर्गो भ्रमतो यदा भवेत्। इस संसार में घूमते 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 किसी प्रकार से संसार और संसारिक व्यस्तों अनासक्ति हो जाए, आसक्ति न रहे, जनस्य तरही अच्युत समागमत समागमम, हे अच्युत हे भगवान, तब ही वैसे व्यक्ति का मन सत्संग में लगेगा, और जब सत्संग होगा तब क्या होगा, सत्संगमो यरही तद एव सदगतौ, जे ही कोई सत्संग करना प्रारंभ कर देगा वो सदगति के रास्ते पर चलना प्रारंभ कर दिया, मुक्ति के रास्ते पर चलना प्रारंभ कर दिया। तो प्रभुपाद जी हम लोगों को मुक्ति के रास्ते पर चलने का तरीका बताए हैं, कौन सा आश्रम ऐसा है, कौन ऐसा जगह है जहां इस्कान के समान प्रत्येक दिन 4:30 बजे मंगला आरती होना होता है, सब लोग नाचते और गाते हैं, जप होता है, गुरु पूजा होता है, भागवत प्रवचन होता है, शाम को संध्या आरती, गीता क्लास होता है, ये सब है क्या? जो लोग इसमें भाग लेते हैं समझना चाहिए कि उन लोगों का संसारिक बंधन थोड़ा कम हुआ है, मैंने कहा 100% कम हुआ है, परसेंटेज है। जब कम हुआ होगा तो यहां पर रहेंगे, कम नहीं होता आश्रम में सोएंगे, ये पहचान है, जैसे टेस्टर है ना वो बुखार का कितना है नहीं, तो ये टेस्टर है। मैंने कहा मुचकुंद जी कह रहे हैं, कहते हैं भवा अपवर्गो भ्रम तो वो यदा भवेत, भवा अपवर्गो, जब संसारिक बंधन थोड़ा कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तब ही सत्संग में मति लगेगी, हे अच्युत हे भगवान। सत्संगमो यदि यरही तरही और यरही कहा गया है, तरही मतलब तब और अरही मतलब जब, जब सब खत्म हो जाएगा तब सत्संग मन लगेगा, और जब सत्संग मन लग जाएगा सत्संगमो यरही तद एव, मतलब निश्चय ही, इसमें कोई दो राय नहीं है, सदगतौ, तब सदगति के रास्ते पर वह जीव चलता है। परावरेसे त्वयि जायते मति, और जब सदगति के रास्ते पर जब व्यक्ति चलना प्रारंभ करता है, सदगति का अर्थ मोटा मोटी मुक्ति का रास्ता, और सदगति मतलब अच्छा मार्ग, महाजनो जिन गथा सुपंथा, इस सुपंथा, जो सुपंथ पर चलना शुरू करता है चार नियम का पालन कर कर, 16 माला जप कर करके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, साधना भक्ति करना, ये सब सदगति है। जब वो सदगति पर चलना प्रारंभ करता है तो मुचकुंज कहते हैं परा और ईसा, हे भगवान आप कैसे हैं, पर और अवर, पर मतलब यह, अवर मतलब ऊपर का, ईसा यह लोक और परलोक आप दोनों के स्वामी है। त्वयि जायते मति, हे प्रभु तब आप में उस व्यक्ति का मन लगेगा, जब सदगति के रास्ते पर चलेंगे तब मन भगवान में लगेगा। हम पूछते हैं ना, हम लोग बार बार कहते हैं प्रभु जी मैं इतना दिन जप कर रहा हूं मन क्यों नहीं लग रहा है, तो मुस्कुन जी बतला रहे हैं मन क्यों नहीं लग रहा है, मन कब लगेगा, जब सत्संग करेंगे एक के बाद एक, एक के बाद एक, संसार चक्र में हम लोग परिभ्रमण करते हैं, भ्रम तो यदा भवेत, परिभ्रमण करते हैं, लेकिन बाई एनी चांस किसी प्रकार से पहले जन्म का पूर्ण कर्म होगा, जो कुछ भी होगा, किसी प्रकार से यदि संसार और संसार के वस्तुओं से अनाशक्ति उत्पन्न हो जाएगी, आसक्ति नहीं रहेगी, तब सत्संग करने का मन करेगा, और जब सत्संग करना प्रारंभ कर देंगे तो सदगति के रास्ते पर चलेंगे, और जब सदगति के रास्ते पर चलना शुरू करेंगे तो इहलोक और परलोक के जो स्वामी हैं उनमें हमारा मन लग जाएगा। यदि मन नहीं लग रहा है इसका मतलब कि हम सदगति के रास्ते पर नहीं चल रहे हैं, सिंपल फॉर्मूला, सिंपल चीज है, सदगति के रास्ते पर चलेंगे तो मन जरूर लगेगा सदगति के रास्ते पर, और वह सत्संग से। तो सत्संग की ही महिमा यहां पर बताई गई है, कहते हैं साधुनाम समचित्तानाम सुतराम मत्कृतात्मनाम, ये तो साधुओं का बताया, अब कहते हैं वैसे साधुओं का दर्शन न भवेद बंध, यदि वैसे साधुओं का जो मान अपमान से परे हों, जो संसारिक बंधन से पूर्णतया मुक्त हो गए हों, सुतराम पूर्णतया मुक्त हो गए हों, और पूर्णतया अपने समस्त आत्मा को भगवान में लगा चुके हों, वैसे लोगों का दर्शन, यदि दर्शन हो जाए तो दर्शन पवित्र कर ए तुमार गुण। अब यहां पर बड़ा सुंदर बात भगवान कह रहे हैं, कहते हैं दर्शन न भवेद बंध, ऐसे लोगों का दर्शन होगा तो न भवेद बंध, भव बंधन हमारे पास नहीं रहेगा। ठीक वैसे ही जैसे आंख में सूर्य रहेंगे, जब आंख में प्रकाश रहेगा, आंख सूर्य के समक्ष होगा और आंख में रोशनी रहेगा तो सब कुछ दिखाई पड़ेगा, यही बात है ना, जब सूर्य ना हो अंधेरा हो तो आंख रहता है दिखाई पड़ता है कुछ भी, सूर्य को होना जरूरी है, है? सूर्य को होना जरूरी है, जब कोई व्यक्ति सूर्य के समक्ष होता है तो उसको आंखों में अंधेरा नहीं रह जाता। तो वैसे ही यदि कोई सौभाग्य और दुर्भाग्यवश किसी भी प्रकार से साधु के समक्ष आ जाता है, उसे दर्शन हो जाता है साधुओं का। हरदास जी समझ रहे हैं ना, किसका दर्शन हो रहा है? अच्छा साधु, हाँ, निद्रा का दर्शन नहीं होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। दर्शन नो भवेद बंध पुंसो, पुंसो का मतलब है ना केवल पुरुषों के लिए है। प्रभुपाद जी करते हैं कि पुंसा मीन्स एनी वन हु हैज डिजायर टू एंजॉय, इज कॉल पुंसा। स्त्री हो चाहे पुरुष हो, स्त्री भी एंजॉय करना चाहती है, पुरुष भी एंजॉय करना चाहते हैं, दोनों एंजॉय करना चाहते हैं। तो इसलिए पुंसो बहुवचन कहा गया है। तो समझना चाहिए कि पुंसा मतलब सबके लिए, सबई पुंसो परो धर्मो यत्रो भक्ति रधोचरे, सब इंजॉयर लोगों के लिए। तो जो संसार में इंजॉय करना चाहते हैं, दर्शनों नो भवेद बंध, उनके लिए साधुओं का दर्शन यदि हो जाएगा तो भव बंधन नहीं रह जाएगा उन लोगों का, भव बंधन से वे लोग मुक्त हो जाएंगे। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है साधु संग। महाराज मुचकुंद इसी बात को भगवान से कह रहे हैं, सत्संग सत्संगमो यदि ये रही तदैव सदगतौ, तब सदगति का रास्ता, तब सब कुछ दिखाई पड़ेगा। कृष्ण सुर साम माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहां नाहीं माया अधिकार। तो साधुओं का संगति हो गया तो रास्ता बिल्कुल सदगति, पक्का रास्ता, सुपंता, अच्छा पंथ हो जाएगा। तो इस प्रकार से नारद जी का गुणानुवाद भगवान किए। अब केवल एक ही एक तो श्लोक पहला जो है 40, उसमें नारद जी के कृपा का वर्णन किए, 41 में नारद जी का वर्णन किए और कैसे कृपा तुम लोगों पर हुआ, वो दर्शन दे दिए। वो कैसे, ये अदृक्षया, ऐसा बात नहीं कि तुम्हारा पुण्य जगा हुआ था, ये अदृक्षया अहेतु की कृपा है। सर्व कारण कारणम, कोई चीज बिना कारण के नहीं होता है, लेकिन जहां भागवतम में यह अदृक्षया आए, समझ लेना उसका कोई कारण नहीं है। ऐसा बात ना कि नलकुब और मणिगिरी पहले कोई पुण्य किए थे इसलिए नारद जी का दर्शन हुआ, इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं यदृच्छया, भगवत कृपा से अकारण ही उनका दर्शन हुआ और जिस दर्शन के चलते एक हुआ। तो उनके कृपा से तुम लोगों को भक्ति की प्राप्ति हुई। अब भगवान कहते हैं, अब उन लोगों को आदेश दे रहे हैं भगवान, अब जाने वाले हैं, कहते हैं तद गच्छतम मत परमो नलकवर साधनम। जैसे अजामिल, अजामिल पर कृपा हुआ तो अजामिल विष्णुदूतों का कृपा हुआ तो अजामिल पहले हरिद्वार गए और हरिद्वार जाकर के भजन किए और बाद में भगवत धाम को प्राप्त किए। ठीक वैसे ही यहां पर भगवान कहते हैं तद गच्छतम, अब तुम लोग जाओ। कैसे जाओ, मत परमौ, मुझको अपने जीवन का लक्ष्य मानते हुए, समझते हुए। मैं क्योंकि तुम लोगों की इच्छा थी तो जो उन्होंने इच्छा किया था भगवान ने एवं अस्तु कह दिया, मत परमौ कह कर करके मैं ही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य बना रहूंगा। तो मानो पूछ रहे हैं कि हम कहाँ जाएं प्रभु, तो कहते हैं साधनम, इसे नल कुबर साधनम कह रहे हैं, गुहयकौ साधनम नहीं कह रहे हैं, इसका अर्थ अलग हो जाएगा। नल कुबर साधनम, तुम लोग अपने अपने घर जाओ, यानी कुबेर जी के पास जाओ और वहां जाकर के तुम लोग भजन करना, और भजन करने के बाद संजातो मई भावो, वहां पर सम्यक रूप से जब भजन करोगे सम जातो मई भाव, तब तुम लोग पूर्णतया हमें कृष्ण कांसस तो हो ही, लेकिन मैं तुम लोगों में निवास करूंगा। भावम वाम इप्सित परमो भव अभव, और जैसा कि तुम लोगों को इच्छा है कि वाणी के द्वारा मेरा नो गुणानुवाद करोगे, जो पहले के श्लोक में वाणी गुणानुकथने श्रवण कथायाम हस्तौ चकर्मसु मनः तव पादयोर् न स्मृति संस्मृतया शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टिम सता दर्शनयस्तु भवतो तनूनाम। जैसा तुम्हारे लिए इच्छा है वह इच्छा तुम्हारा पूरा होगा। तो यहां पर एक तरह से हिंट दे दिए भगवान इस श्लोक में कि वाम इप्सितम, जो तुम लोग को इच्छा है वह तुम लोगों को प्राप्त हो। परमो अभवत, यानी तुम परम गति को प्राप्त हो जाओ। अभव भव नहीं, यानी जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर से छूट जाओ। तो इसलिए भगवान दो चीज यहां पर कह रहे हैं कि तुम लोग अब जाओ अपने बाप माँ के घर जाओ और वहां जाकर के भक्ति उसके करना, और भक्ति करने के बाद जो तुम्हारी इच्छा है कि तुम मेरे पास आओ, संजातो मई भाव, हमेशा कृष्ण कांसस रहने का, तो तुम्हारी वो इच्छा पूरी हो जाएगी, पुनः तुम लोग इस संसार में नहीं आओगे। इतना सुनकर सुखदेव गोस्वामी बड़े प्रसन्न हुए, बड़े प्रसन्न हुए। अब सुखदेव गोस्वामी श्लोक संख्या प्रभुपिता हे नलकुबर तामणिग्रीव, अब तुम दोनों अपने घर वापस जा सकते हो। चूंकि तुम मेरी भक्ति में सदैव लीन रहना चाहते हो, अतः मेरे प्रति प्रेम उत्पन्न करने की तुम दोनों की इच्छा पूरी होगी, और अब तुम उस पद से कभी भी नीचे नहीं गिरोगे। इसलिए वे नलकुबर और मणिग्रीव जो है स्थिर कंठ का मधुकंठ बने। प्रभुपाद कहते हैं जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है भक्ति पद को प्राप्त करना और भक्ति कार्यों में सदैव लगे रहना। ऐसा जानकर ही नलकुबर तामणिग्रीव ने उस पद को प्राप्त करना चाहा और भगवान ने उनकी वह दिव्य अभिलाषा पूरे होने का आशीर्वाद दिया। अब सुखदेव गोस्वामी का आनंद देखिए, इस प्रकार से भगवान के द्वारा केवल तीन श्लोकों में भक्ति का महिमा, भगवत भक्त के संग का महिमा इत्यादि जब सुने तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं श्री सुक उवाच, जैसा कि मैं श्लोक संख्या 43 और 39, ये दोनों श्लोक जो हैं सुखदेव गोस्वामी परिचित महाराज से अपना मनोभाव व्यक्त किए हैं। तो यहाँ पर कहते हैं इति उक्तो तौ परिक्रम्य प्रणम्य च पुनः पुनः बद्धो उखलम आमंत्र जगत्मतु दिशम उत्तराम। यहाँ पर सॉन्ग बुक है लाना, दामोदर सकम निकालना उसमें से। भगवान परिदृश्य देखिए, सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर परिदृश्य के द्वारा ये बतला रहे हैं, तो हम लोगों को वह परिदृश्य देखना चाहिए। उखल बंधन लीला वाला जो परिदृश्य है कि कैसे ये लोग बंधे हुए हैं और सॉरी अदेव खुल गए, भगवान बंधे हुए हैं उखल में। जो गोकुलेश्वर हैं वे गोकुलेश्वर भगवान उखल में बंधे हुए हैं, अब उनका आज्ञा पाकर यह बहुत ही कौतुकमयी है, यह दृश्य बड़ा ही आनंदमयी दृश्य है कि भगवान बंधे हुए हैं और वे भगवान कैसे नलकुबर और मणिग्रीव को मुक्त किए और भगवान आज्ञा दिए कि अब तुम जाओ, तुम भाव बंधन में नहीं फंसोगे। तो सुखदेव गोस्वामी का अनायास ही भावपूर्ण हृदय से यह श्लोक निकल गया। यहां पर देखिए सुखदेव स्वयं क्या कह रहे हैं, उखल के ऊपर यहां पर करें, भगवान उखल में बंधे हुए हैं। जब किसी को हम बांधते हैं, चाहे गाय हो चाहे पशु हो चाहे कोई, बांधते हैं, बांधने का मतलब क्या हुआ है? भागे नहीं ना, किसने बताया? हाँ, बांधने का मतलब वो भागे नहीं, चाहे जेल में बंधन हो, चाहे पहले हथकड़ी लगाते थे और पैर में भी कड़ी लगाते थे ना, ताकि भागने न पावे। तो भगवान को यहां पर बांधा गया है कि भगवान भागने न पावे। और किसमें बांधा गया भगवान को? मैया ने किसमें बांधा है? उखल में। उखल अपना काम किया, भगवान जा रहे हैं ना, उखल तो नहीं कहे मैया ने तुमको बांधा है मेरे में, तू नहीं जा सकते हो, बल्कि उखल भी अनुगमन किया भगवान का, सहयोग किया। ये पीछे पीछे ढुलकने लगा, भगवान आगे जा रहा है, पीछे पीछे भी जा रहा है। जिसमें बांधा गया है भगवान को, मैया ने बांधा के कहीं जाएगा नहीं, वो भी ढुलकने लगा। किसी को इस खंभे में बांध दो और जाने लगे, खंभा भी चलने लगे, तो बंधन कहलाएगा। तो सुखदेव गोस्वामी का भाव इस पर, हृदय में भाव उत्पन्न हुआ कि कैसे ये चल रहा है, ढुलकता चलता है। और साथ साथ मैया कुछ कहने न पावे, बंधन भी रखा है। कृष्ण बंधे हुए हैं, बंधे हुए कर जा रहे हैं, तो बांध कर भी रखा, इसलिए बद्धो उखलम। सुखदेव गोस्वामी इसको कहते हैं बद्धो उखलम आमंत्रय, बद्धो उखलम। एक तो उखल में बंधा हुए हैं कि जाने न पावे, उखल जा रहा है। मैया पूछ दिया क्यों तू साथ साथ गया, कहा देखो हम तो बांध कर रखे हैं, खुले नहीं है, बद्धो उखलम। इस उखल का अनुगत्य भी है और श्री दामोदर का बंधन भी बना हुआ है। ये दोनों विपरीत हैं, है कि नहीं? बंधन मतलब चलना नहीं, चल भी रहे हैं और बंधन भी है, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत भाव है। यही है कृष्ण लीला का रसास्वादन, यही है कृष्ण लीला। इसलिए सुखदेव गोस्वामी यहां पर प्रणाम के कहते हैं, इति उक्तो तो परिक्रमा प्रणम्य, नल कुबेर तो प्रणाम किए, भगवान को ही प्रणाम नहीं किए, वो लोग उस उखल को ही प्रणाम किए और उस रसी को भी प्रणाम किए। सत्यव्रत मुनि यही यहां पर गाए हैं ना श्लोक संख्या 7 में, कुबेरात्मा जौ बद्ध मूर्ता यदा त्वं त्वया मोचितो भक्ति भाजौ कीर्तौ तौ, कुबेरात्मा जौ तथा प्रेम भक्ति स्व कामे प्रयक्ष न मुक्षे गृह में स्ति दामोदरे। तो यहां पर कहते हैं कुबेर आत्मजौ बद्ध मुक्त ये दत्वम, ये लोग बंधे हुए थे जो मुक्त हो गए, और जो मुक्त है वह बंधा हुआ है। तो या मोचित हो भक्ति वहां जो कृत हो जा। अब आगे प्रणाम करते हैं, नमस्ते तु धामने स्फुर दुप्ति धामने तदियो दरायत विश्वस्त धामने नमस्ते तु धामने स्फुरदीप्ति धामने तदियोदरायत विश्वस्त धामने नमो राधिकायै तदीय प्रियायै नमो राधिकायै तदीय प्रियायै नमोनन्त लीलाय देवाय तुभ्यं दामोदर दामोदर राधा दामोदर तो इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी कहते हैं नल कुबर मणिग्रीव भगवान को भी प्रणाम कर रहे हैं, जो दामोदर भगवान हैं उनको प्रणाम कर रहे हैं, उस उखल को प्रणाम कर रहे हैं, उस रस्सी को प्रणाम कर रहे हैं। इति उक्तो तौ परिक्रम्य प्रणम्य च पुनः पुनः, बार बार, एक बार नहीं कई एक बार प्रणाम कर रहे हैं कि धन्य हो उखल जो तुम भी बंध गए हम लोगों को मुक्त करने के लिए, धन्य हो तुम वह रज्जु जिसने अपना स्वभाव त्याग दिया, रस्सी का काम है बांधना है? लेकिन बंधन होने के बाद ही भगवान हम लोगों का रक्षा करने के लिए, हमें मुक्त करने के लिए आए। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं बार बार प्रणाम किए और परिक्रमा किए, इस प्रकार से आमंत्र भगवान के द्वारा आदेशित होकर के, जैसा कि श्लोक संख्या 42 में भगवान बताए हैं, आदेश दिए हैं, तो आदेशित होके जगमतु दिशा उत्तराम, उत्तर दिशा की तरफ वे लोग प्रस्थान किए। तो इस प्रकार से ये भागवत महापुराण के दशम स्कंद का यह दसवां अध्याय समाप्त हुआ। धन्यवाद। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न है, क्वेश्चन कमेंट?
हरे कृष्णा प्रभु, बहुत धन्यवाद। पिछले श्लोक में सवितुर यथा करके शब्द आया था, जैसे सूरज को देखने पे आंख अंधकार का सामना नहीं करती।
सूरज के उपस्थिति में आंख में अंधकार नहीं होता है।
तो वैसे ही भगवत भक्तों का दर्शन करने से हमें
भवबंधन
से मुक्ति मिल जाती है। तो अभी साधु तो अपनी स्थिति में स्थित है, पर देखने वाला व्यक्ति अगर सही चेतना में नहीं है तो क्या उसे सेम इफेक्ट, सेम फायदा होगा? क्योंकि हम अभी सुन रहे थे संडे को जब महाराज क्लास दे रहे थे तो लीलामृत से वो पढ़ रहे थे कि प्रभुपाद जी फ्रांस में कथा कर रहे थे और फिर बाद में प्रभुपाद जी एक उदाहरण दिए तो जनता बवाल करने लगी। प्रभुपाद जी एक उदाहरण रखे कि जो
बच्चे हल्ला करने लगे, हाँ
हाँ, जो अगर सरकार का नियम पालन नहीं करेगा तो उसको दंड मिलेगा, तो सब लोग हल्ला करने लगे। तो हालांकि प्रभुपाद जी तो शुद्ध भक्त हैं तो उनकी उपस्थिति का लाभ तो होना है, सबको होना है, पर अगर व्यक्ति जो देख रहा है उस साधु को अपने दृष्टिकोण से तो उसको क्या सेम लाभ मिलेगा?
बिल्कुल, सूर्य के रोशनी में आप कैसे भी जाओ तो विटामिन डी मिल जाएगी। क्या सुना? ये बच्चा तो डिस्टर्ब कर रहा है, माइक की जरूरत नहीं है। तो सूर्य की रोशनी में जाने से विटामिन डी मिल जाती है। किसी भी भाव से जाए, बस चला जाए। तो वैसे ही साधुओं के समक्ष जाने पर दर्शन, दर्शन अपवित्र कर ये तुम्हार गुण है। कल दर्शन मात्र से पवित्रता हो जाएगी उसमें। अपवित्रता के अलग अलग, ये कोई नहीं जरूरत 100% प्योर हो जाएगा, प्यूरिफाइड हो जाएगा, लेकिन प्यूरिफाइड होगा, वो काम करता है एंड स्लोली स्लोली होता है। जैसे आपने दो चीज मिक्स कर दिया, प्रभुपाद जी का वो लोग दर्शन किए पवित्र जरूर हुए, प्रभुपाद जी की वाणी वो सुने, यदि वे पवित्र न हुए होते तो खलबलाए क्यों? वो खलबला गए ना, मतलब एक्शन किया ना, काम किया ना, वाणी काम किया ना। प्रभुपाद जी बोले कि तुम लोग जाए तो वो गवर्नमेंट का नियम पालन करना, वो लोग गवर्नमेंट के अगेंस्ट थे, प्रभुपाद ने बोला, बोलते ही काम किया, काम किया तो रिएक्शन हुआ। अब बाद में वो प्यूरिफिकेशन है उनका, वो उनका प्यूरिफिकेशन है, रिएक्शन होना प्यूरिफिकेशन है। बाद में स्लोली स्लोली आई एम श्योर समबड़ी मस्ट हैव बिकम डिवोटी, और नहीं तो जरूर याद करते होंगे जो लोग होंगे, उन पूछो कहाँ स्वामी जी आए थे, ऐसा बोले थे, हम लोग गुस्सा आया था, तो कुछ असर पड़ा तो याद है अभी तक से? याद है, कम कम बात थोड़े है, असर पड़ा है राधा कृष्ण प्रभु को। तो
हरे कृष्ण, बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया क्लास, सुंदर व्याख्या आपने जो मुचकुंद महाराज की जो श्लोक का व्याख्या किए, और इस व्याख्या में साधु संघ की और कृष्ण भक्ति की व्याख्या की आपने, लेकिन प्राय हम देखते हैं कि हमारे जो मंदिर के भक्त है, सॉरी मुझे माफ करना, कुछ गलत नहीं समझना, वो समझते हैं कि देवकिन प्रभु आएगा तो सभी लोग मंदिर में आना चाहिए, वो डरते हैं आपसे, और सभी लोग मंदिर में, जैसे लास्ट टाइम आप कार्तिक किए संध्या आरती, तो पूरे 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 भक्त यहाँ पर उपस्थित थे कीर्तन में आना, आपने कहा कि इनको याद दिलाओ पुराने दिनों की। तो क्या ये साधु संघ का जो प्रयत्न यह है, इनके ऊपर नए पानी चढ़ता है, जो आना चाहिए भगवान गौर चैतन्य महाप्रभु सामने खड़े होना चाहिए, आरती करना चाहिए, व्याख्या कीजिए।
अरे डर से भी आते हैं तो फायदा ही होता है, काहे चिंता करते हो, फायदा तो होता ही, भगवान के सामने आए, भगवान का नाम लें, भले बाद में हमको गाली दें, हमें कोई इसका अंतर नहीं पड़ता है, लेकिन भगवान का नाम लेते, भगवान के नाम में शक्ति तो है ना, प्यूरिफिकेशन जरूर होगा, भगवान के सामने नाचेंगे तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम भक्ति है, कुछ फायदा होगा, हमें को तकलीफ नहीं होगा, हमें गाली दें, आए कम से कम, हमें ये अच्छा लगता है, सब लोग आए नाचे गाए अच्छा लगता है, फायदा होगा। वेल, ये सब आप जो कह रहे हैं ये पॉजिटिव रूप से व्यक्ति तब लेगा जब वह भव अपवर्ग हो जाएगा, तब वो भव अपवर्ग नहीं होगा तब तक से पुनरअपि जन्म पुनरअपि मरणम पुनरअपि जननी जठरे शयनम, मछली गंगा जी में रहती है इसका मतलब नहीं कि पवित्र हो जाती है, असर जरूर पड़ेगा। तो आश्रम में रहें लेकिन साधना भक्ति इत्यादि न करें, कुल आश्रम में रहने से असर कुछ जरूर पड़ेगा, गंगा जी में है तो असर तो कुछ जरूर है, उसका सुअवसर है, उसको सुअवसर है। तो वैसे हम लोगों को सुअवसर है, अब सुअवसर का लाभ नहीं ले रहे हैं, मनुष्य देह प्राप्त करना अपने आप एक सुअवसर है, निर्देह आद्यम सुलभम सुदुर्लभम, उसे आत्महा कहा गया है। वैसे ही जो आश्रम में रह कर करके और प्रभुपाद जी के बताए गए नियम कानून का पालन नहीं करता है वो आत्महा है, वो आत्महा है, वो अपना स्पिरिचुअल लाइफ हनन कर रहा है। प्रभुपाद जी क्या जरूरत था कुंभ मेला में नहाने का? क्या वो नहा करके मंगला आरती आने से पवित्र हो गया? पवित्र थे ही, लेकिन प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे थे लोगों के लिए। मैं संध्यार्थी ना आऊं तो अभी कोई कुछ नहीं बोलेगा, और मैं किसी के बोलने से नहीं आता हूं, इसलिए आता हूं कि प्रभुपाद जी चाहते हैं, प्रभुपाद जी अपने हाथ से लिखे हैं, टेक आउट दैट राइटिंग, प्रभुपाद जी अपने हाथ से लिखे हैं, ऑल डिवोटी कनेक्टेड टू कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट मस्ट अटेन मंगला आरती, मस्ट चैंट 16 राउंड, मस्ट अटेन भागवत प्रवचन, मस्ट अटेन संध्या आरती, ऑल दीज थिंग्स आर इन राइटिंग। तो प्रभुपाद जी का वर्ड है। तो एनीवे सत्संग करना चाहिए, हमें इसका तकलीफ नहीं, लोग गाली हमें देने चलेगा, उनका आशीर्वाद है, प्रेज और गाली दोनों वर्ड का केवल भ्रम है और कुछ नहीं, ज्यादा नहीं। और कोई प्रश्न? यस, इधर किसका प्रश्न था?
अरे ऋषभ,
अच्छा वो गाली देने वाले बाद में कहते हैं प्रभु जी आप अच्छा काम करते हो, धक्का तो देते हो ना कभी कभी कहते हैं। हाँ
अरे ऋषभ प्रभु जी, आपने बताया कि नारद जी कृपा किए नलकुवर और मणिगिरी पर अपने स्वभाव से, तो क्या नलकुवर और मणिगिरी लोकपाल से पुत्र, आगे 20 श्लोक में विश्वास लोकपाल से पुत्र, यानी
कुबेर जी के बेटे,
कुबेर जी के पुत्र है, उनके पुत्र समझकर उन पर कृपा कर रहे हैं साथ साथ में, कि ये इतने बड़े के पुत्र है, कुबेर जी के पुत्र है, तो इनको ऐसा शोभता नहीं, तो इसके इसका उद्धार करना चाहिए।
बात तो सही है कि लोकपाल के बच्चे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कुबेर जैसे ही ये लोग भी हैं। ब्राह्मण का बच्चा कोई जरूरी नहीं ब्राह्मण ही होगा, शूद्र भी हो सकता है, संस्कार होना बहुत जरूरी है। तो इनमें संस्कार नहीं था, प्रभुपाद जी कहते हैं बल्कि उन स्त्रियों में संस्कार था जो देख करके नारद जी को कपड़ा पहन लिया, नंग धड़ंग रह गए, संस्कार नहीं था, भले कुबेर के बेटे थे। इसीलिए नारद जी निंदा किए हैं, उसी में धन का निंदा किए, इन लोगों का निंदा नहीं किए हैं, ये तो बाई प्रोडक्ट है वो जो व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन धन का निंदा किए हैं नारद जी, कि धन कैसे लोगों को पागल बना देता है। तो कुबेर के लोग लोकपाल के बच्चे हैं, इसलिए इनको तो और सिविलाइज होना चाहिए, सिविलाइज काम नहीं कर रहे थे, इसलिए नाराज उन पर अनुग्रह किए। बल्कि अंत में अच्छा, इन लोगों को दुख नहीं था, बड़े खुश थे, भले वृक्ष के पेड़ में थे, पेड़ से बड़े आनंद से थे, ब्रज में जन्म था, नंद बाबा के आंगन में, कैन यू इमेजिन क्या सौभाग्य है। अली मने लागे वृंदावननी को, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, और क्या है, हाँ दूध दही मिलने वाला जगह है, क्या तकलीफ है इनको, खूब सेवा होती थी इन लोगों का। और कोई प्रश्न?
तो प्रभु जी जैसा अभी आप बताए कि नलकुवर मणिग्रीव ने पहले कोई भक्ति नहीं की थी, तो जहां भी यद शब्द का प्रयोग हुआ है भागवतम में, मतलब कॉजलेस मर्सी है वो, तो और हम एक और प्रसंग सुनते हैं नारद मुनि का, जो हम बहुत बार बच्चों से ड्रामा करवाते हैं, कैलाश का, जो नारद मुनि जाते हैं कैलाश नामक एक व्यक्ति के यहाँ और उसको बोलते हैं कि चलो भगवत धाम, वो बोलता है मैं अगली बार आऊँगा, फिर बुढ़ापे में बोलता है बाद में आऊँगा, फिर कुत्ता बन जाता है, सांप बन जाता है। तो ये दो प्रसंगों से मतलब जो मैं समझ रहा हूँ ये कि जैसा आपने बताया कि जब वृक्ष के रूप में भी वो नंद बाबा के आंगन में थे, तो नारद मुनि बाद में प्रसन्न हुए कि इन्होंने भक्ति किया बहुत अच्छा, जिसकी वजह से भगवान इन पर मुस्कुरा रहे हैं। तो साधु कृपा करेगा भी, चाहे कॉजलेस मर्सी भी हो, जब तक हम प्रयास नहीं करेंगे भक्ति करने का, तब तक भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। अन्यथा अगर ऐसा होता तो नारद मुनि क्यों, या नारद मुनि जैसे शुद्ध भक्त, प्रभुपाद जैसे शुद्ध भक्त रिजर्व नहीं है कि मैं इन पे कृपा करूंगा इन पे कृपा नहीं करूंगा। तो अगर ऐसा हो कि बिना किसी की इच्छा के भी भगवत धाम उसको भेजा जा सके, तो सारे संसार को अभी भगवत धाम भेजा जा सकता है।
नारद जो चाहते हैं कि सबको भेज दिया जाए, नारद जी इसी काम में लगे हुए हैं, उनकी बड़ी इच्छा है सब भेज दिया जाए, लेकिन भगवान कहते हैं ठीक है नारद जी आपकी बड़ी इच्छा है, वो कैलाश का भी उसी भगवान साथ में ही हुआ ना,
नारद जी के भगवान चिंता मत कीजिए, सब भगत बन गए हैं, सब हरे कृष्ण जप कर रहे हैं, हरदास सबको भगत बना दिए हैं आजकल, सब लोग हरे कृष्ण जप कर रहे हैं। तो भगवान कहे अच्छा चलो देखते हैं भाई। तो कैलाश के पास आ गए, भजन कर रहा है, तो चलो कैलाश भगवान आ गए, पुष्प मान गए, अरे नारद जी बहुत धन्यवाद आप आए, कम से कम अभी बेटा आए शादी उदी कर लूँ, उसके बाद ये उत्तरदायी तो है ना खत्म कर लूँ, वो हो गया। फिर नारद जी आए, नारद चांस दिए, जबरदस्ती नहीं किए, चांस दिए उसको, जबरदस्ती भक्ति नहीं करा सकते हो, चांस दिए उसको। फिर अरे अभी तो नया नया शादी विवाह हुआ है, थोड़ा घर गृहस्थी संभाल लें, कहे नारद जी ठीक है। बाद में आए फिर नारद जी, अपना वो बहू लेकर के आया, प्रणाम कराया, बच्चे 5-6-8 बच्चे हो गए थे, देखिए कितने अच्छे बच्चे हैं, हैं। तो अंत तक जब अंतिम बार नारद जी आए और कहे देखो बच्चे भी बड़े हो गए, सब कुछ हो गया, अब चलो, तो कहता है नारद जी आपको और कोई घर नहीं मिला क्या, हमारे पास बार बार क्यों आते हैं परेशान करने के लिए। तो भक्ति का दिखावा करने से भक्ति नहीं होता है। नल कुंवर मणिग्रीव दिखावा नहीं कर रहे थे, देखो नारद जी कृपा से उन लोगों को सत्संग की प्राप्ति हुई, उनका भावापवर्गो हो गया, नारद जी के दर्शन से भावापवर हो गया, तब उनके सत्संग का लाभ मिला। क्या सत्संग का लाभ मिला, नंद बाबा के आंगन में थे, वहां पर डेली कीर्तन होता था, कृष्ण चर्चा होती थी, और ब्रजवासियों को सेवा का लाभ मिला। गर्ग मुनि कहते हैं कि वहां पर ब्रजवासियों का ये सेवा करते थे, इनकी स्मृति तो बनी हुई थी नारद जी कृपा से। तो किसी को चाहिए कि बेटे के शादी करना, धन चाहिए, तो कहते हैं इनको धन दे दो, जो जो चाहिए, इन लोगों को सेवा करते थे, सेवा करते थे और संग और हरिनाम, तो भजन किए। तो मंदिर में आकर हम भजन करेंगे तो फायदा जरूर होगा, वही असली कृपा यही है, साधु की असली कृपा यही है कि हम भजन में लग जाएं, बस किसी प्रकार से, जे न के न प्रकार है ना मन कृष्ण निवेश, मन कृष्ण में लग जाए।
प्रभु जी आपने बता रहे अथॉरिटी जब भी चैट्राइज करेगा, डांटेगा, वो हम पॉजिटिव में लेना है और भक्ति में आगे बढ़ना है। तो अगर अथॉरिटी डांट रहे बट उनकी इंटेंशन अलग है, वो साफ साफ पता चल रहा है उनकी इंटेंशन अलग है, तो वो समय में हम कैसे एक्सेप्ट करना है।
तो अभी आप अपना काम करो, पर कर्मा भयावह, उनको जज मच करो, वो जैसा काम करेंगे उसको उनका फल मिलेगा। आप कंस गीता पढ़ना, कंस गीता जानते हो, ये कंस गीता है, वसुदेव जी और देवकी से कह रहा था कंस कि आप मान लो कि हम आपके 6 पुत्रों को मार दिए तो भी आप लोग नाराज मत होना, ये तो उनका वैसा कर्म था कि मामा के हाथ से ही मारे जाना था, मैं क्या कर सकता हूं, अब जो मैं कर्म हुआ तो मुझे फल मिलने वाला है, लेकिन आप नाराज मत होना, ये है कंस गीता। सही बात कहा कंस, बिल्कुल सही बात कहा कि सब लोगों को अपने कर्म का फल मिलता है, यदि अथॉरिटी गलती भाव से कर रहा है तो उसको फल उसका मिलेगा, लेकिन आप उसमें अपना नाक लड़ाओगे तो 50% उसका आप पर चला जाएगा। तो नाक मत लड़ाओ, सीधे अपना काम करो, पर कर्मा भयावह, भले गलत काम करने के लिए करता है करो, डजंट मैटर। स्मार्ट मत बनो कि अरे मैं जानता हूं तो खराब काम कर रहा है, हम लोग तो आजकल पढ़ लिख करके यही करते हैं ना, पहले हम ऐसा नहीं करते थे, बाप ने जो कहा दिन है रात है रात है, बस लक्ष्मण जी को राम जी ने कहा सीता को छोड़कर के, सब बताने के बाद भी सीता जी ने, लक्ष्मण ने नहीं कहा कि आप गलत काम कर रहे हो, बिल्कुल शुद्ध हैं आप, जानते हो आपने आपने अग्नि परीक्षा लिया था, भूल गए हो क्या, लक्ष्मण जैसा कहे नहीं किए, आज्ञा पालन किए। तो अल्टीमेटली यही कि आज्ञा पालन करना चाहिए हम लोगों को। हाँ बोलो, ए बच्चा कहाँ गया, माइक वाला कहाँ चला गया, जाओ दौड़ 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 दौड़, हाथ उठाओ हाथ उठाओ हाथ उठाओ, देखो भाई देखो कहाँ हाथ उठा हुआ है,
हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत सुंदर क्लास। प्रभु जी मेरा प्रश्न है, जैसे कि हम शास्त्रों से सुनते हैं कि पौंड्रक है और कंस है, इन लोगों ने कोई वैष्णवों की सेवा नहीं की थी, फिर भी भगवान ने इनको मारा और इनको वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई, लेकिन नल कुंवर मणिग्रीव तो ब्रज में रह के वृक्ष के रूप में बहुत वैष्णवों की सेवा किया ब्रजवासियों की, फिर भी इन्हें भगवत धाम की प्राप्ति क्यों नहीं हुआ?
किसने बोला कि भगवत धाम प्राप्ति नहीं हुई?
कैलाश में गए बोलते हैं।
अरे जाकर के बाप माँ से आशीर्वाद लेकर के आए तब ना, हमारे नए भक्त बोलते हैं तो हम कहते हैं जा भाई बाप माँ का आशीर्वाद लेकर के आओ फिर भगत बन जाओ, हम थोड़े डायरेक्टली बोल देंगे कि तू भक्त बन जाओ तो वो टीवी पर चले जाएंगे, हमारे भक्त हमारे बच्चे को हरे कृष्ण वाले भगत बना लिए, तो भगवान तो जानते थे कि टीवी पर ना वो लोग जाएं कुबेर जी, इसलिए पहले कहे जा बाप माँ से परमिशन ले लो। नाराज जी खराब काम नहीं कहे हैं, सॉरी भगवान खराब, भगवान जानते थे कि पक्के हैं कि वहां जाकर के फंसने वाले नहीं हैं, भगवान जानते हैं फंसने वाले नहीं हैं, इनकी इच्छा है कि मेरा गुणानुवाद करें, तो भगवान ने उस श्लोक में कहा ना भगवान ने कि तू जाओ और आओ परमिशन लेकर के बस। तो आप लोग प्रचार करते हो नया भक्त बनाते हो तो डायरेक्ट मत, ये पटना का बात बता रहा हूं, हमारे कुछ यूथ प्रीचर लोग थे और एक आईएएस ऑफिसर थे, उनका बेटा भक्त बन गया, जप कर रहा था सब कर रहा था, बाप माँ भी मंदिर आना शुरू कर दिए और डोनेशन भी दे रहे थे सब कर रहे थे, तो हमारे दिल्ली के वो सुंदर गोपाल के टीम वाले वहाँ पर प्रचार करते हैं पटना में, आई मीन हमारा यूथ प्रीचिंग करते हैं, तो लड़का डिसाइड किया कि अब मैं भक्त बनूंगा फुल टाइम, और बाप माँ स्वीकार नहीं कर रहे थे धीरे धीरे, तो ये लोग उसको छिपा दिए कहीं रोहिणी या कहीं ले जाकर कहीं छिपा दिए, हमें उधर दिल्ली तरफ छिपा दिए, बाप बहुत परेशान हो गया और कहा कि देखो मैं आईएएस ऑफिसर हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं चाहता हूँ 24 आवर में मेरा बच्चा यहाँ पर आ जाना चाहिए, और नहीं तो मैं आप लोगों का वो हकद ही करूँगा कि आप लोग समझ नहीं सकते हो, तो फिर बच्चा को लाना पड़ा, तो ऐसा काम क्यों करने का? भगवान इसीलिए स्पष्ट कहते हैं कि भैया तू जाओ अपने बाप माँ से परमिशन लेकर के तब आ जाना है। तद गच्छतम मत परमौ नल कुबर साधनम, तो अपने घर जाओ और संजातो मई भाव, ये भगवान की कृपा ही है कि कहते हैं कि तुम्हारा मन मेरे भक्ति में लगा रहेगा, आशीर्वाद ते हैं और कहते हैं इप्सितम परमो अभवत, और जैसी तुम्हारी इच्छा है तो परमो अभवत बाद में तो हमारे पास आ जाना, लेकिन परमिशन लेकर के आना। तो ये देखिए प्रैक्टिकल है, हम प्रचार करते हैं भक्त बनाते हो ना, तो भक्त बनाने का बाप माँ का आशीर्वाद लेकर के तब भक्त बनाओ, तब ठीक है। ठीक है ऑल राइट्स, यस और कोई प्रश्न है? हाँ हाँ आपका, अरे देखो ये हरा दास बिना सिग्नल का गाड़ी चलाता है, लाल में भी चला देगा, अरे वो बेचारा पूछ रहा है उसको पूछ लेने दो। हाँ बोलो।
हरे कृष्णा प्रभु जी, जैसे कि अभी प्रभु जी के प्रश्न के उत्तर में आपने बताया कि जैसे अथॉरिटी क्या बोलते हैं तो हमको देखना नहीं चाहिए, हमको करना चाहिए, लेकिन इसके पहले ही आपने बताया कि जो गीता में भगवान ने कहे हैं कि यति यत आचरति श्रेष्ठ, तो हम देखते हैं कि करते नहीं है लेकिन बोलते हैं, तो हम समझते भी हैं कि हमको करना तो चाहिए लेकिन एक्चुअली हम कर नहीं पाते हैं चाह के भी, क्योंकि दिखता नहीं है वैसा कुछ, तो
तो इसीलिए आपका नहीं ये अथॉरिटी का रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है, उसको इतना इंटेलिजेंट होना चाहिए, अरे मैं पालन नहीं कर अगर बड़बड़ करते रहूँ कौन हमारा पालन करेगा, उसको इंटेलिजेंट होना चाहिए, लेकिन आपको पालन करना चाहिए, नहीं तो आप उसी चक्कर में पड़ जाओगे, तो वो तो नीचे जा ही रहा है आप भी नीचे जाओगे। ये भेड़िया स्थान अपने बिहार में कहते हैं ना, वो भेड़िया स्थान में फंस जाओगे, वो तो नीचे जा रहा है, आप जानते हो पालन नहीं कर रहा है राइट, वो नीचे जा रहा है और आप न पालन करके आप भी नीचे जा रहे हो। आमीन। कहा जाता है कि गुरु का आदेश हमेशा पालन करना चाहिए, प्रभुपाद जी कहते हैं तीन परिस्थितियों में आप ना कर सकते हो, यदि वो मायावाद प्रेजेंट कर रहा हो या फुल्ली 100% ऑब्जर्व हो गया है, माया में बिल्कुल पड़ गया है, तब या शादी करने के लिए कहे तब, तीन ही है जब ना ना कर सकते और हमेशा पालन करो। यस मिस्टर हरादास, अरे चालू कर लो
गौरंगा।
तो किसके पिता माता भक्त है और बेटा भी भक्त है, और पिता माता बेटा बोलता है मैं पूरा ब्रह्मचारी बनूंगा, और पिता माता भक्त बोलता है नहीं जाना चाहिए, तो पिता माता का बात मानना चाहिए बेटे को नहीं मानना चाहिए?
इसका दो उत्तर मैं दे सकता हूं। एक है फैनाटिक भाव, और फैनाटिक भाव में नहीं मानो, और एक है मैच्योर भाव, और मैच्योर भाव यह है कि मानिए, बैठिए, उन लोगों को प्रचार कीजिए, समझाइए। रघुनाथ दास गोस्वामी तुरंत भगत बनना चाहते थे, भगवान चेतन महाप्रभु के गड़बड़ हो जाएगा, तू जाओ कुछ देर रहो, समझाओ बुझाओ, बाद में आना, वही हुआ। अब अमेरिका का अलग चीज है, इंडिया का अलग चीज है। अमेरिका में जो आसक्ति है बाप माँ का बच्चों से, मैं इससे बहुत गुजरा हूँ हरादास, बहुत एक्सपीरियंस है। मैं भी शुरू शुरू में अमेरिकन बन गया था, और बाहर सिगरेट पीते हैं वो लोग डीमन है, शराब पीते हैं डीमन है, यही भाव था, यूर माया यूर एन डीमन, बाहर जाकर कहोगे डंडा मारेंगे लोग। तो हमें प्रचार करना है, प्रचारक को सब भाव देखना पड़ेगा। तो भारत है, भारत में बाप माँ से बच्चों का संबंध है, वो इमोशनली कहेंगे कि हम सब आएंगे, लेकिन मैं कहता हूं कि ऐसा कार्य करो कि जो लॉन्ग रन चले, लॉन्ग रन चले, तुरंत ना हो, नहीं तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, उसमें दोनों की हानि होती है, भक्त जो बनता है उसका भी हानि होती है, और जो भक्त बनाता है उसका भी हानि होती है। मैं आपको तीन उदाहरण दे सकता हूं। एक डिबोटी था संकीर्तन दास, ब्रजहरि प्रभु जानते हैं, उसके बाप माँ आए, हम लोग भी छिपा दिए थे, उसका भाई बोला हम आपको गोली मार देंगे, उनको बोला आपको गोली, मैं भक्त डायरेक्टर था शायद या वाइस प्रेसिडेंट था, गोली मार देंगे आपको, हमने छिपा दिया था, संकीर्तन को भक्त बनाया, अच्छा भक्त बना, बाद में धीरे धीरे बाप माँ भी सुधर गए, राइट, बाद में वो भी भक्त बन गए थे, लेकिन वो जो फैनेटिसिज्म से भक्त बना हुआ था इसलिए वो ज्यादा टिक नहीं पाया। संकीर्तन दास आज ही पता नहीं कहाँ, ऑस्ट्रेलिया में कनाडा में कहीं पर है, हिज इन टच विथ मी, लेकिन भक्ति नहीं करता है। तो नेचुरल कुछ भी हो वो अच्छा होगा, नेचुरल, अब आम ही है नेचुरली, हरदास सुन रहे हो ना, आम नेचुरली पकता है तो अच्छा है, जबरदस्ती पकाओगे तो साइड इफेक्ट हो जाता है। तो मैं तो यही कहूंगा कि नेचुरली पकने आना चाहिए, होलसेल होलसेल। उसके बाप को समझाओ कि तुम्हारा धर्म है अपने बच्चे को भक्तना, पिता अनुसस्या जननी अनुसस्या, तुम नहीं करो तुम्हारा काम मैं कर रहा हूं भैया, काहे चिंता करता है, तुम्हारा काम मैं कर रहा हूं, तुम्हारे बच्चे को मैं भक्त बना रहा हूं, तुम्हें बनना चाहिए, तुम्हें बनाना चाहिए, तो परिवार को भी भक्त बना दो, ठीक है। हमारा एक लड़का है अभी तलासरी में है, अबे उसकी बहन अभी इधर बैठी हुई है, किधर है चली गई, मैं देखा उधर है माला बना रही है, उसके बाप माँ कहते हैं प्रभु ले लो इसको, राधिका कहना है प्रभु अच्छा अच्छा लड़का है, खराब नहीं है, वो अपने बेटे से उग नहीं गए हैं, एक बेटा है अपना देखभाल कर रहा है, कि मैं सुना मुझे बड़ा अच्छा लगा कि एक दिन था प्रभुपाद जी मांग रहे थे कि अपना एक बेटा दे दो, और एक सौभाग्यशाली बाप माए कहते हमारा बेटा को ले लो, ये भाव होना चाहिए, ये भाव होना चाहिए। धन्यवाद, हरे कृष्ण। हाँ माता जी उधर एक बच्चा कहाँ गया माइक वाला, दौड़ जल्दी,
हरे कृष्णा। प्रभु जी थैंक यू फॉर द क्लास। प्रश्न ये है कि अगर हमारे सामने साधु है तो हमें तो उनका दर्शन हो गया, पर अगर कोई व्यक्ति है उनका मजाक उड़ा रहा है या निंदा कर रहा है वो साधु का, तो साधु नाम समचित्ता नाम, उन्हें तो फर्क नहीं पड़ा, वो वहां से चले गए, तो तभी तुरंत हमें क्या करना चाहिए? उन पे कुछ क्रोध करना चाहिए व्यक्ति के ऊपर, या उनका प्योरिफिकेशन प्रोसेस है तो उनका छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उन्हें साधु का कृपा तो मिलेगा फेस टू फेस दर्शन होकर।
तीन चीज है उसमें करना, एक तो आप उसे प्रचार करो, समझाओ, तो अज्ञानी होगा, आप समझाओगे समझ सकता है, अज्ञानी होगा, यदि दुष्ट होगा तो छोड़ दो, काहे उसके पीछे पड़े हो, छोड़ दो उसको। और तीसरा है, जब परिस्थिति ऐसी नहीं हो रही तो आत्महत्या कर लो, उम्मत करना कभी भूल कर। तो दो चीज अप्लाई कर सकते हैं, उसे प्रचार कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ देना चाहिए। साधु का भले निंदा किया हो तो अभी उसको फायदा हुआ है, निंदा करने के बाद भी फायदा हुआ है, क्योंकि साधु से उसका पला पड़ा हुआ है, तो काम आज नहीं तो कल जरूर पड़ेगा, वो काम करेगा, चिंता मत करो। निंदा भी किया हो तो भी, दवा कड़वा हो तो भी काम करता है, उसका चिंता मत करो।
थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण।
ऑल राइट, श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराशि भागवतम की जय।